पूर्व सत्र में आचार्य श्री के निर्देशानुसार सम्यक दर्शन का विभिन्न अनुयोगों से वर्णन प्रारंभ किया गया था। तो सर्वप्रथम अपन ने द्रव्यानुयोग में समय पाहुड़ ग्रंथ की 13वीं गाथा के आधार पर सम्यक दर्शन का वर्णन पढ़ा था, जिसमें कुंदकुंद आचार्य महाराज कहते हैं कि भूतार्थ से अधिगत अर्थात जाने गए नौ पदार्थ ही सम्यक दर्शन है या सम्यक्त्व है। सम्यक दर्शन को सम्यक्त्व भी कहते हैं। अब इसमें सम्यक शब्द जो है इसका थोड़ा सा परिचय अपन प्राप्त कर लेते हैं। सम्यक का अर्थ क्या होता है? पहले अपन शब्दार्थ देखते हैं, ये शब्द व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो तत्वार्थ परंपरा के ग्रंथों में अंचु गति पूजनयोः एक धातु आई है, अंचु धातु, उसके रूप जो चलते हैं वो अंचति अंचेमी प्राकृत में के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली धातु है। और यहां क्या कर रहे हैं, उसमें सम उपसर्ग लगाकर क्विप प्रत्यय कर रहे हैं। तो क्विप प्रत्यय का नियम है कि वो सर्वापहारी लोप को प्राप्त होता है व्याकरण में, उसमें से कुछ बचता नहीं है। क्विप क्विप तो क्विप क्वीन ऐसे प्रत्यय आते हैं, वो सर्वापहारी लोप हो जाता है और फिर एक अव्यय की रचना हो जाती है सम्यक। अंचू में से अख बता बचा और सम उपसर्ग लग गया सम्यक। जी यह कैसे हुआ, वो किसी प्रक्रिया से ही हुआ है, व्याकरण में सम्यक ऐसा रूप बना। अर्थ होता है पूज्य, समंचती इति सम्यक, ये रूप है। नहीं है यहां तो संस्कृत की बता रहा है वो, ठीक है ना, प्राकृत में उसका रूप अंचेमी बनता है और संस्कृत में उसका रूप अंचामी बनेगा। अर्चयामी इत्यर्थ, अर्थ उसका यही होगा। तो सम्यक का अर्थ होता है जो भली प्रकार अर्चनीय है, पूजनीय है। और ये पूजनीयता कब आती है, जब वह भाव अथवा द्रव्य तत्संबंधी दोषों से रहित हो। जैसे ज्ञान में यदि संशय विपर्यय और अनद्यवसाय होंगे तो उस ज्ञान के साथ पाया जाने वाला श्रद्धान भी दूषित श्रद्धान होगा और उस श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कह सकते। तो सम्यक दर्शन उस श्रद्धान को कह सकते हैं जिसके साथ विद्यमान ज्ञान संशय विपर्यय और अनद्यवसाय से रहित है और इसलिए वो पूज्य है क्योंकि निर्दोष है। दुर्भिणी वेश विमुक्कम कहा, विभिन्न ग्रंथों में सम्यक दर्शन के विषय में जो वर्णन है, दुराग्रह से रहित होता है सम्यक दर्शन। दुराग्रह से रहित होता है इसलिए पूज्य होता है। और सम्यक दर्शन को मंगल कहा गया है, सम्यक दृष्टि को भी मंगल कहा गया है। सम्यक दृष्टि अविरत, विरत, देश विरत, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण में प्रतिदिन सभी मुनिराज मम मंगलम दंसनम दंसनीय ये कहते हैं। और मंगल शब्द का अर्थ वीरसेन आचार्य महाराज ने जो पाप को गलाए उसको मंगल कहा है। तो इसमें अपने को समझना होगा कि एक मुनिराज एक अविरत सम्यक दृष्टि को भी मंगल कैसे कह रहे हैं। तो यहां पर समाधान ये होगा कि उसका उसकी जो अविरति है वो मंगल नहीं है, वो सम्यक दर्शन का आधार होने से मंगल है। सम्यक दर्शन उस जीव के आश्रित है कि नहीं, मिथ्या दृष्टि जीव को मंगल नहीं कह रहे, उनको पाप जीव कहा है धवला में मिथ्या दृष्टि जीव को, और सम्यक दृष्टियों को पुण्य जीव कहा है।
मिथ्या दृष्टि पाप गालन करने वाला कैसे हो सकता है?
वहां मिथ्यात्व विवक्षित नहीं है, उसके लिए एक गाथा दी है। नन्ही कन्या मंगल क्यों है, बहुत अद्भुत गाथा है वो। एक गाथा हम पंचास्तिकाएं से सुनाते हैं कि नन्ही कन्या मतलब कुमारी कन्या, छोटी सी कन्या, वो मंगल क्यों है। एकदम अनोखी गाथा है, हम आपकी अनुमति से सुनाना चाहते हैं। पंचास्तिकाएं ग्रंथ जह वीयराय सवण्णुजिणवरो मंगलम हवै तह दीसै। जह वीयराय सवण्णुजिणवरो मंगलम हवै लोए हयराय बालकण्णा तह मंगलमिति विहाणि। गाथा नंबर नहीं है ये, टीका में 14 नंबर की गाथा है। तात्पर्य वृत्ति टीका के अंदर 14 नंबर की गाथा है, पंचास्तिका है मंगलाचरण की। इस गाथा में आचार्य कह रहे हैं कि जिस प्रकार लोक में वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान मंगल होते हैं, बाल कन्या को मंगल क्यों माना है उसको समझाते हुए आचार्य कह रहे हैं कि जिस प्रकार लोक में अर्थात जगत में वीतराग सर्वज्ञ जिनवर मंगल होते हैं, उसी प्रकार हय राय बाल कन्या, बाल कन्या रागादिक विकारों से रहित है, तह मंगल विधि विजाना ही, इसलिए उसको उसी प्रकार मंगल जानो। तो लौकिक मंगल है वो, और जिनेन्द्र भगवान लोकोत्तर मंगल है, लेकिन तो भी दोनों में कुछ तालमेल है, इसलिए जह और तह, जैसे जिनेन्द्र भगवान वीतराग होने से मंगल है वैसे ही वह मंगल है। कैसा? स्त्री की तुलना सुहागन स्त्री जिनेन्द्र के साथ नहीं की गई है। जह जिण वरो मंगलम हवई, गाथा में लिखा। क्या कुमारी कन्या निर्विकार हो?
कुमारी कन्या शब्द ध्यान रखना,
कुमारी कन्या निर्विकार होती है, यहां पर स्पष्ट लिखा है। इस पर बहुत ऊहापोह संभव है, पर जितना लिखा है उस पर अगर अपन ध्यान दे तो गाथा में केवल इतना ही लिखा है कि जैसे वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान लोक में मंगल होते हैं, वैसे ही निर्विकार बाल कन्या मंगल होती है। बिल्कुल है। किसको? अब ये तो उन आचार्यों से पूछना होगा। बाल कन्या, निर्विकार कन्या, जब तक वो निर्विकार है, जब तक वो बाल है, तब तक। निर्विकार से मतलब विकार नहीं है उसमें। हय राय बाल कन्या, जिसके अंदर उस श्रेणी का राग नहीं है।
इसीलिए चक्रवर्ती आचार्य शांतिचंद्र जी महाराज का जो विवाह हुआ था वो 6 वर्ष की कन्या से हुआ था।
आचार्य श्री 9 वर्ष के थे और कन्या 6 वर्ष की थी। तो चर्चा ये चल रही थी कि अविरत सम्यक दृष्टि की जो अविरति है उसको मंगल नहीं कहा है। प्रतिक्रमण में, प्रतिक्रमण में दंसनम दंसनीय मम मंगलम, मेरे लिए मंगल कौन है? सम्यक दर्शन भी मंगल है और सम्यक दृष्टि भी मंगल है। सम्यक दृष्टि जीव बहुत सुलभ नहीं होते। मनुष्य गति में संख्या प्ररूपणा में 7 अरब यानी 700 करोड़ जीव चौथे गुण स्थान वर्ती होते हैं। सात के बाद 9 शून्य लगा लीजिए, 29 अंक प्रमाण जो मनुष्यों की गणना है, पर्याप्तक मनुष्यों की, उनमें केवल 700 करोड़ जीव चौथे गुणस्थान वाले अविरत सम्यक दृष्टि होते हैं। केवल मनुष्य की बात चल रही है, केवल मनुष्य की। और 13 करोड़ पंचम गुणस्थान वर्ती होते हैं, पहली प्रतिमा से आर्यिका तक सब मिला के 13 करोड़। और पूरे जितनी कर्म भूमियां हैं सब में 15 कर्म भूमियों में 13 करोड़ अविरत सम्यक दृष्टि। और अब नहीं, चौथे पंचम गुण स्थान विरताविरत, चूक हो गई, विरताविरत सम्यक दृष्टि जी, देश विरत संयता संयत 13 करोड़ होते हैं जी। अभी केवल मनुष्य गति का विषय है। और 2.5 द्वीप में असंख्यात तिर्यंश नहीं होते सम्यक दृष्टि, वो स्वयंभू रमण के मिला करके सब हो सकते हैं। मनुष्य लोक में पंचेंद्रीय तिर्यंश असंख्यात नहीं है। तो समंचतीति सम्यक, सम्यक च तत् दर्शनम, सम्यक दर्शनम, दर्शनम दृशिर धातु से दर्शन शब्द बना ल्युट प्रत्यय करके, वहां देखने रूप दर्शन भी होता है दर्शन शब्द का अर्थ, और मानने रूप श्रद्धान करने रूप प्रतीति रूप दर्शन भी होता है। प्रवचन सार की 237वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने लिखा है, यथोदित आत्म तत्व प्रतीति रूपम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। प्रवचन सार 237 क्रमांक गाथा है, यथोदित जैसा जिनेन्द्र द्वारा उदित कथित है, वैसा जो आत्मा है उसके तत्व यानी स्वरूप की प्रतीति रूप विश्वास रूप श्रद्धान सम्यक दर्शन है। और इस 9वीं गाथा की टीका में अमृतचंद सूरी कह रहे हैं आत्मख्याति में, ततः अमीष्वपि नव तत्वेषु, अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं लगभग उपसंहार करते हुए कि इन नौ पदार्थों में, नौ तत्व भी कहते हैं उनको, नौ पदार्थों को, इन नौ पदार्थों में भूतार्थ नयेन, भूतार्थ नय से, सत्यार्थ नय से, निश्चय नय से एक जीव एव प्रद्योतते, अकेला जीव ही प्रकाशमान होता है। यहां पर अजीव तत्व में पुद्गल को गौण करके जीव के ही अचेतन भाव को लिया है, रागादिकों को, जिसको चिदाभास कहा गया है। तो उन सब को देखो तो हर पदार्थ में एक जीव ही प्रकाशमान होता है, क्योंकि ये सब जीव की ही स्थितियां हैं, जीव की ही अवस्थाएं हैं, जीव की ही दशाएं हैं, आश्रव बंध वगैरह सब जीव की पर्याय है, संवर निर्जरा मोक्ष किसकी पर्याय है, जीव की है, अकेला जीव सब में प्रकाशमान है। एवं असौ, इस तरह यह जीव एकत्वेन द्योतमानः, अपने एकत्व के साथ प्रकाशमान होता हुआ शुद्ध नयत्वेन अनुभूयते, एव शुद्ध नय के रूप से अनुभूत होता ही है। यानी उन नौ में आप देखोगे तो एक शुद्ध जीव प्रकाशमान होगा ही होगा। यात्व अनुभूति, और ये जो परिचय है जीव का, उन सब में एक जो प्रकाशमान हो रहा है उसका जो परिचय है सात्मख्यातिरेव, वह वही आत्मख्याति है। ख्याति का अर्थ होता है प्रसिद्धि, वही आत्मख्याति है। इसका एक बार परिचय होने पर अपने ज्ञान में आत्मा ख्यात हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है और आत्मख्यातिस्तु, अब ध्यान से सुनने की बात है, आत्मख्याति ही तो सम्यक दर्शनमेव, सम्यक दर्शन ही है। अभिप्राय ये हुआ कि आत्मा का वास्तविक परिचय हो गया तो आत्मा के विषय में जितनी भी भ्रांतियां थी, जितनी भी धारणाएं थी, जितनी भी मान्यताएं थी, मान्यता का अर्थ क्या है, श्रद्धान, वो निराकृत हो जाती है और आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो अपनी मान्यता में स्थापित हो जाता है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। बिल्कुल, वो भी एक विवक्षा है। अभी हम उसी गाथा को ढूंढ रहे थे, अष्टपौड़ में आई है, अप्पाणम चेव सम्मत्तम, अप्पाणम हो ही सम्मत्तम, ऐसी एक गाथा आई है। उसका अंतिम चरण यह है कि अब सम्यक दर्शन के अनेक परिभाषाएं हैं, तो सम्यक दर्शन क्या है, तो बोले गुण और गुणी में अभेद करो तो निश्चय से आत्मा ही सम्यक दर्शन है। आत्मा गुणी है, सम्यक दर्शन गुण है, इन दोनों को अभिन्न करके देखो सम्यक दर्शन क्या है, तो आत्मा ही सम्यक दर्शन है, ऐसा विवक्षा लगा करके कथन कर दिया। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान अस्थापित हो और आत्मा का स्थापित हो जाए, ऐसा कैसे शक्य है? देखो वो सारे सारे आत्मवादी दर्शन मानते हैं कि शरीर और आत्मा अलग है, तो ये तो कोई बड़ा महत्व का विषय नहीं हुआ। लक्षण दोनों में भेदन करके प्रज्ञा चक्षु द्वारा पर को पर और स्व को स्व निर्णीत करना, उस निर्णय को अपनी मान्यता में धारण करना सम्यक दर्शन है। और अभी जो स्व में जो मिश्रण है, उस मिश्रण को ही स्व माना जा रहा है ना, उसको फिल्टर करने की बात है, छानने की बात है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, दो श्रद्धा नहीं हो सकते। और अभी हम आपको एक ऐसी परिभाषा भी बताएंगे सम्यक दर्शन की कि सम्यक दर्शन ही प्रेम है। वो परिभाषा जब धवला की वाचना चल रही थी हम अचंभित हो गए थे कि आचार्य वीरसेन स्वामी ने ये कैसी परिभाषा दी है, सम्यक दर्शन को प्रेम कह रहे हैं वो, तो हमने वो भी अभी यहां पर रखा हुआ है संग्रह में। अब वो कैसा प्रेम है, किसके प्रति है, उसका वर्णन अभी करेंगे। तो अनुरक्ति शब्द है, नहीं है प्रेम शब्द तो संस्कृत है। हाँ, यत्र काये मुने हे प्रेम ततः प्रच्याव्य देहिनम, समाधि तंत्र में आता है ना प्रेम शब्द, वो उर्दू है। हाँ जी, अभी तो समय पावड़ का वर्णन चल रहा है, भूतार्थ से ही बता रहे हैं। नहीं नहीं इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी की बात नहीं है, इसमें केवल ज्ञान की बात चल रही है। आपको परिचय प्राप्त करना है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि कुछ चेष्टा करना, तो अभी चेष्टा की चर्चा ही नहीं है, चेष्टा चारित्र का विभाग है। वो बाद की बात है, नानस्य फलम उवेक्खा, ज्ञान का फल चारित्र है, समता भाव है, अभी इसकी चर्चा है ही नहीं फल की। अभी पहले तो ये पहली सीढ़ी तो शुरू हो जाए, फिर तो उसके उपरांत वो सब आना है। बिल्कुल, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान का तात्कालिक फल है, वो प्रधान फल है और तात्कालिक फल है। और जैसे ही ये सारा परिचय अपने को होता है, अब इसके लिए एक उदाहरण देते हैं अपन कि किसी कुएं का पानी खारा होता है, किसी का रासायनिक स्वाद वाला होता है, किसी का फीका होता है, किसी का मधुर भी होता है। आपको पता है अहित क्षेत्र में एक कुएं में चार स्वाद का पानी है, अहित क्षेत्र में एक ही कुआ है, उसमें इस तरफ से पानी निकालो तो अलग स्वाद आता है, दूसरी तरफ से निकालो तो अलग आता है, ऐसे चार स्वाद वाला पानी एक ही कुएं के अंदर, चार अलग अलग झीर। तो ये एक दृष्टांत दे रहे हैं हम जल का, फिर दार्ष्टांत अपन आत्मा का लेंगे। समुद्र का जल खारा होता है और उसमें भी जो लवण का परसेंटेज है वो नीचे नीचे बढ़ता जाता है, इसलिए एक दूरी के बाद वहां जीव जंतु नहीं मिलते हैं। एक गहराई के उपरांत वो अलग अलग प्राणियों की अलग अलग गहराई है। वेल मछली उतनी ही दूर तक जा सकती, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। डॉल्फिन मछली की एक अपनी अवधि है, शार्क की अपनी अवधि है, वो जितना सहन कर सकती उतनी जाती है। ऑक्टोपस की अलग है अवधि, और अन्य अन्य जो मछलियां हैं, अन्य प्राणी हैं, उनकी अपनी अपनी अवधियां हैं। तो समुद्र का जल हुआ, फिर सरोवर का जल भी होता है, वापिका का जल भी होता है। फिर वापिका के तीन भेद होते हैं, गोल बावड़ी, चौरस बावड़ी और फिर लंब चौरस बावड़ी। इन तीनों के नाम नंदीश्वर भक्ति में आते, वापी, सत पुष्किरिणी और सुदीर्घिका। सुदीर्घिका का लंब चौरस है, ऐसे तीन हैं। तो इन सब के पानी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। वापी की परिभाषा यह है कि जहां सीढ़ियों से उतरकर आप पानी निकालते हैं उसको वापी कहते हैं। उसका आकार भिन्न होगा तो उसकी संज्ञा भिन्न हो जाएगी, नाम अलग हो जाएंगे। फिर ओस का पानी भी होता है, वर्षा का जल भी होता है, और कहीं कहीं पर तो पूरे वातावरण में एक वाष्प जैसी भरी रहती है, उमस, वो भी जलांश ही है। तो विभिन्न प्रकार के जल है, शुद्ध नाले का पानी, नदी का पानी, फिर झीर का पानी तो है ही है, और जहां से नदी प्रारंभ होती है झरने का पानी, अलग अलग प्रकार के पानी है। सबके स्वादों में भी बड़ा अंतर है। चंद्रकांत मणि का जल भी होता है, नहीं चंद्रकांत मणि का, ठीक है, चांदनी में उसमें से पानी झरता है। यहां पर कौन सी जगह, ईरवत्तूरु, वहां चंद्रकांत मणि के भगवान एक थे, अपन गए थे ना ईरवत्तूरु दक्षिण कर्नाटक में। जी जी यदि वैज्ञानिक से पूछा जाए कि ये इतने प्रकार के पानी हैं, आप इस जल के विषय में क्या कहोगे, तो वो एक फॉर्मूला में उत्तर देता है, H2O। बस इसी प्रकार 84 लाख योनियों में, 197 लाख कुल कोटियों में, 4 गतियों में और विभिन्न पर्यायों में जो जीव है उसको शुद्ध नय एक ही कहता है, उस H2O के समान, और वो सिद्ध स्वरूप ही है। नियमसार ग्रंथ में एक गाथा आती है जिसका उत्तरार्ध है, सव्वे सिद्ध समाणा शुद्धनया संसिधि जीवा, सव्वे संसिधि जीवा शुद्धनया सिद्ध समाणा, सारे संसारी प्राणी सारे संसारी जीव शुद्ध नय से सिद्ध समान है। तो वैज्ञानिक ने वो H2O जो पकड़ा है, अपन इन जीवों में से कौन सा वो जीव पकड़ेंगे, कौन सा H2O पकड़ेंगे, उसको पकड़ने वाली दृष्टि का नाम शुद्ध नय है। और उसको यहां पर आचार्य अमृतचंद सूरी ने 10वें कलश में उसका चित्रण किया है। वो तो 9वां है, हम 10वां बता रहे हैं। आत्मस्वभावम परभाव भिन्न मा पूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। आत्मस्वभावम प्रकाशयन शुद्ध नय, आत्मस्वभाव को प्रकाशित करने वाला, अन्वयार्थ लगा रहे हम, शुद्ध नय होता है। और वो प्रकाशयन प्रकाशित करता हुआ अभ्युदेति, अभ्युदय को प्राप्त होता है। शुद्ध नय जब भी प्रकट होगा तो आत्मस्वभाव को प्रकाशित करते हुए प्रकट होता है। अब आत्मस्वभाव के विशेषण देख लीजिए, आगे पूरे जितने भी हैं वो सब विशेषण है। कैसा है आत्मस्वभाव? पर भाव भिन्नम, पर भावों से भिन्न है। भाव शब्द के अनेक अर्थ, भाव शब्द का अर्थ पदार्थ भी होता है, आपने पढ़ा होगा, भाव शब्द का अर्थ पदार्थ होता है। कहां पढ़ा है? यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावाश्चिदचित, चेतन अचेतन भाव, यहां पर भाव का अर्थ वो 53 भाव नहीं लेना, और अंतरहिता अनंत चेतन और अचेतन पदार्थ, ये भाव शब्द का अर्थ होता है। तो यहां पर भाव भिन्नम, पर पदार्थों से भिन्न, पर भावों से भिन्न आत्मा का स्वभाव है। और कैसा है? अपूर्ण, अपूर्णम, असमंतात् पूर्णम, वह स्वभाव अपने आप में परिपूर्ण है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं। ये कभी सामायिक में और ध्यान में बैठ करके स्मरण करने योग्य तथ्य है। प्रवृत्ति में अभ्यस्त हो जाने के कारण कभी कभी ये शुद्ध नय विस्मृत हो जाता है। तो इसका स्मरण करने से अपन आज की भाषा में कहो तो रिचार्ज हो जाते हैं। अपन अपने को भूलते हैं तभी आकुलता होती है, और जैसे ये स्वरूप स्मरण में आता है और ध्यान में आता है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शब्दों में आ जाए, ये अपने को इसको आइडेंटिफाई कर, अपने अपना आइडेंटिफिकेशन बना करके स्वीकार करना होता है, अपना परिचय स्वीकार करना होता है कि ये मेरा रियल परिचय है, ये मेरा आई कार्ड है शुद्ध नय। तब लगता है कि ये जो मैं दूसरा रोल कर रहा हूं वो तो केवल रोल है, नाटक है, वो विकल्प है। विकल्प का अर्थ क्या है? उपाधि सहित जो अपना अहंकार है वो विकल्प है, और उपाधि रहित जो अहम है वो शुद्ध ने है। तो कोई भी टाइटल लगा दिया आपने अपने ऊपर, मैं के साथ आपने मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं साधु, मैं गृहस्थ, और शरीर आश्रित कोई भी परिचय आपने लगाया मैं के साथ, उसको आचार्यों ने विकल्प और उसका पर्यायवाची शब्द अहंकार कहा है। अहंकार ही विकल्प है। अहंकार का अर्थ क्या होता है? अहं करणम अहंकार, मैं करना अहंकार। अहंकार का अर्थ अभिमान नहीं है, तभी हो सकती है। मैं सुखी दुखी दोनों बातें हो सकती है। अभिमान तो 8 चीजों को लेकर करेगा, लेकिन अहंकार तो दिन रात कर रहा है। नहाने के पहले मैंने स्नान नहीं किया, अर्थात वो अपनी अनुभूति कैसे कर रहा है, अपना परिचय क्या कर रहा है? स्नान रहित मैं। और स्नान के एक क्षण उपरांत क्या बोल रहा है? स्नात मैं। तो मैं बदल गया। तो ये बदलने वाला मैं आत्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं है। आत्मा का यथार्थ स्वरूप त्रिकाली ध्रुव है। तो अपूर्णम अपने आप में परिपूर्ण है। जो भी कमियां लग रही है अपने को अपने में, वो अहंकार की मांग है। अहंकार सोचता है कि ये मिल जाएगा तो मैं पुष्ट हो जाऊंगा, पर अनादिकाल से आज तक अहंकार कभी पुष्ट नहीं हुआ। सब कुछ पा करके भी चक्रवर्ती बन गया तो भी फिर खाली है। अभी देखिए, 2 चक्रवर्ती अधोगति में स्थित अभी भी, और वहां के कष्टों को प्राप्त हो रहे, जिन्होंने मनुष्य गति के उत्कृष्ट सुख भोगे आयु पर्यंत। 6 खंड का पूरा साम्राज्य अकेले मेरा है, इस मानसिक सुख को जिन्होंने भोगा वो आज नरकों में दुख भोग रहे हैं। बहुवारंभ परिग्रहत्तम नारकस्य आयुषः। कुछ नहीं है इसमें। तो इन सब को हटाकर बीच बीच में, कभी सामायिक में, कभी ध्यान में, ये शुद्ध ने स्मरण करने योग्य है। और कुछ समय उसमें स्थिर रहने के बाद जो कर्मों का वेग है वो शांत होने लगता है, विशुद्धि बढ़ने लगती है, और फिर आनंद आने लगता है। आनंद और कहीं से नहीं आता, विशुद्धि की वृद्धि से आनंद आता है। संक्लेश की वृद्धि से दुख होता है, सबका अनुभव है। तो विशुद्धि की वृद्धि से सुख होगा ही होगा, कौन रोक सकता है? H2O की दृष्टि से मान रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना? अभी यहां त्रिकाली ध्रुव अपन किसी इसकी अपेक्षा से नहीं मान रहे हैं, पर सापेक्ष जो परिणमन चल रहा है आत्मा का, उसको त्रिकाली ध्रुव नहीं मान रहे। वो हो भी नहीं सकता त्रिकाली ध्रुव। और कैसा है आत्मस्वभाव? आद्यंत विमुक्तम, आदि और अंत से विमुक्त है। इस देखिए, एक एक पद पर अगर ध्यान लगाया जाए तो पहला पद क्या था? परभाव भिन्नम आत्मस्वभावम। आत्मस्वभाव का ही ध्यान करना है। कैसा है आत्मस्वभाव? पर भावों से भिन्न है। अब पर भावों में क्या क्या आएगा? पर द्रव्य भी आ जाएंगे, और जो पर सापेक्ष विकारी भाव हो रहे हैं वो भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। उनसे भिन्न है आत्मा का जो स्वभाव का अर्थ यहां पर शुद्ध स्वभाव है। यहां पर शुद्ध न्यायिक द्वारा ग्राह्य स्वभाव है। अपूर्णम, अपने आप में परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है। ऐसा लगता है ना कि अपन 3-4 साल और कुछ सीख लेंगे तो और अपने अंदर पूर्णता आ जाएगी। पूर्णता पहले से ही है। निमण्णा ने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की मूर्ति बनाई थी क्या? उसने मूर्ति को देखकर जो अमूर्ति वाला भाग था उसको 12 साल साफ किया था। तो बस वही काम अपने को करना है, जो शुद्ध नए से जो जिनेंद्र भगवान आत्म स्वभाव को बता रहे हैं, बस उसकी रक्षा करके बाकी जो है उसको साफ करना है। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है और इसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है। और यहीं से आनंद की शुरुआत हो जाती है। जिसको सुनने में इतना आनंद आ रहा है उसको पाने में कितना आनंद आएगा। फिर दूसरा विशेषण लगाइए, परभाव भिन्नम हो गया। इसमें आप जितना ज्ञान प्राप्त करके चिंतन कर सकते हैं, परभाव भिन्नम आप क्रम से कर सकते हैं, पूरा विपाक विजय धर्म ध्यान सब लगा सकते हैं। मैं ज्ञानावरण के उदय से होने वाले भाव रूप नहीं हूं, उससे भिन्न हूं। मैं दर्शनावरण के उदय से होने वाले भाव रूप नहीं हूं, उससे भिन्न हूं। अंतराय के उदय से होने वाले भाव रूप नहीं हूं। 148 प्रकृतियों के साथ लगा सकते हैं, पर भाव भिन्नम। पर भाव में फिर पर द्रव्यों को लगा सकते हैं। अपन रागवश कुछ भी बोलते हैं लोक व्यवहार में, दो दोस्त बोलते हैं कि हम दो तन हैं और एक जान है, ये ठीक है। ये जो औदयिक भाव चल रहा है उस भाव के कारण ऐसी भाषा मुंह से निकल रही है, पर तत्व दृष्टि से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहां तो मेरा शरीर मेरा नहीं है, तो फिर दो तन और एक जान कैसे हो सकती है। अनंत तन मैंने धारण किया लेकिन फिर भी उससे एक नहीं हुई मेरी जान, तो फिर अन्य जीव से मेरी मेरा जीव एक कैसे हो सकता है। पर भाव भिन्नम अपूर्णम, अपने आप में परिपूर्ण है। ये मोक्ष का मार्ग बनने का मार्ग नहीं है, मिटने का मार्ग है। जो कुछ बने हैं अनादिकाल से अपन, बस वो मिट जाए तो फिर मोक्ष हो जाए। अपूर्णम और आद्यंत विमुक्तम, न कहीं से प्रारंभ है न कहीं पर अंत है। ये त्रैकालिक सत्ता का सूचक विशेषण है। अपन एक आयु के बारे में अगर कोई ज्योतिष बोल दे कि आपकी आयु 7 वर्ष बची है, तो उस एक वाक्य को लेकर 7 वर्षों में 7,000 संकल्प विकल्प हो जाते हैं।
ये करूंगा, ये किया नहीं, अभी ये बाकी रहा है।
आद्यंत विमुक्तम, आदि अंत से रहित है। जैसे ये वायर है, अगर ये बहुत लंबा हो तो सामान्य व्यक्ति नहीं बता सकता कि ये कहां से शुरू हो रहा है और कहां समाप्त हो रहा है। तो इसको अपन एक उदाहरण मानते हैं कि इसमें कहीं बीच में एक धागा बंधा हुआ है और आगे पीछे बहुत लंबा वायर है। बस इसी प्रकार अपने अस्तित्व का वायर भी बहुत लंबा है। वो जो धागा बंधा हुआ वो वर्तमान पर्याय है। और उस वर्तमान पर्याय में फंस कर, वो जो गांठ लगी उसमें फंस कर, अपन अपने अनादि निधन अस्तित्व को बिल्कुल भूल जाते हैं। सिर्फ चर्चाओं में कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वो बोलने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान करने की बात है। आद्यंत विमुक्तम, और फिर क्या कह रहे हैं, एकम, एक अद्वितीय है। एक शब्द के तीन अर्थ होते हैं। एक शब्द का एक अर्थ होता है अकेला, एक शब्द का दूसरा अर्थ होता है अन्य। अमरकोश में एक पंक्ति आती है, एक मुख्यान्य केवले। पंडित पन्नालाल जी को पूरा अमरकोश कंठस्थ था, पूरी डिक्शनरी। कोई भी शब्द बोले तो वो तुरंत उसका श्लोक बोल देते थे। बहुत मुश्किल काम था। तो जैसे एक का अर्थ अन्य कैसे निकालेंगे, तो मां बच्चों से कहती है ना, एक तू है जो दिन रात खेलता रहता है और एक ये देख तेरा भाई टॉपर है। तो यहां पर एक शब्द का अर्थ अन्य है, अन्य, इससे अन्य। जैसे श्वेतांबर तत्वार्थ सूत्र पाठ में कालश्च, ये जो सूत्र है वहां पर काल द्रव्य को माना नहीं गया है स्वतंत्र द्रव्य, वहां पंचास्तिकाय की मान्यता है। तो वहां पर जो सूत्र पाठ है श्वेतांबर तत्वार्थ सूत्र में कालश्चेत्येके, ये पाठ है। एके यानी कुछ आचार्य, अन्य आचार्य कालश्च काल को भी द्रव्य मानते हैं। वो अन्य आचार्य कौन है? दिगंबर आचार्य। तो ये उनके सूत्र में पाठ है पांचवें अध्याय में कालश्चेत्येके, उनके यहां पांच ही है पंचास्तिका है। व्यवहार काल को मान रहे हैं लेकिन निश्चय काल को नहीं मानते। तो एक शब्द का अर्थ अन्य भी होता है, एक शब्द का अर्थ अकेला भी होता है, और एक शब्द का तीसरा अर्थ अद्वितीय होता है। केवल कह सकते हैं, बिल्कुल, केवल वही है, कोई दूसरा उसकी बराबरी में नहीं है। जैसे सामायिक पाठ में एक जगह एकम शब्द आता है ना, नहीं वो नहीं, उसके पहले तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये, वहां कहीं पर आता है। न स्पृश्यते कर्म कलंक दोषयो ध्वांत संगैर्विदग्मेष्मि निरंजनम नित्यम अनेकमेकम, निरंजनम नित्यम कम अद्वितीयम इत्यर्थ। तम देवम आप्तम शरणम प्रपद्ये, उन आप्त देव की शरण को मैं प्राप्त करता हूं। शरण के साथ द्वितीय विभक्ति होती है, तम देवम आप्तम शरणम प्रपद्ये। हिंदी में अपन उनकी शरण को प्राप्त करता हूं बोलते हैं, संस्कृत में द्वितीया का प्रयोग होता है। तस्य शरणम गच्छाम या प्राप्त, वहां उस वैसा प्रयोग नहीं होता, तम शरणम। फिर और कैसा है आत्मस्वभाव, विलीन संकल्प विकल्प जालम, संकल्प और विकल्पों के जाल को विलीन कर देने वाला आत्मस्वभाव है। स्वभाव का आलंबन लिए बिना संकल्प और विकल्पों का अंत नहीं हो सकता। अहम और अहंकार, इनमें से चयन अपने को करना है, अहम को चुनना है या तो अहंकार को। अहम यानी वो शुद्ध नय वाला अहम, विलीन संकल्प विकल्प जालम। इसके दो अर्थ निकल सकते हैं, समास अपन अलग अलग प्रकार से करें, रहित भी एक अर्थ निकलता है और दूसरा अर्थ ये निकलता है कि जिसका विकल्प से रहित हो जाती है आत्मा। तो ऐसे आत्म स्वभाव को प्रकाशयन, प्रकाशित करता शुद्ध नय अभ्युदेति, शुद्ध नय उदय को प्राप्त होता है, अभ्युदय को प्राप्त होता है। और शुद्ध नय से जाना हुआ जो आत्म स्वभाव है वो मिथ्यात्व रूपी अंधकार का विनाशक है। तो समयसार और समयसार कलश के आधार पर जो सम्यक दर्शन का वर्णन था वो अभी अपन ने दो दिनों में कुछ विस्तृत किया था। तो अब इसके बाद अपन आगामी सत्रों में और भी बहुत सारे ग्रंथ, अपन ने 24 ग्रंथों के नाम लिए थे, उन सब ग्रंथों के आधार पर सम्यक दर्शन को समझने का प्रयत्न करेंगे। आज इतना ही रखें। जैनम जयतु शासनम।